ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकारी सेवाओं में होने वाली विदेश यात्राओं को व्यवस्थित और मितव्ययी बनाने पर सरकार का जोर। विदेश यात्रा के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष की राष्ट्रीय सभा में नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के एकजुट होने पर दिया जोर। खगराज भट्ट बने सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री। रोहतक से बोलबम यात्रा के लिए भारत के 3 नेपाली नागरिकों की झारखंड में बस दुर्घटना में हुई मौत। और भारत के राज्य उत्तराखंड में हाइड्रो पावर परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सरकारी सेवाओं में होने वाली विदेश यात्राओं को व्यवस्थित और मितव्ययी बनाने पर जोर दिया है। कार्यालय के प्रवक्ता हेमराज अर्याल ने बताया कि अब किसी भी कर्मचारी को विदेश यात्रा पर भेजने से पहले अनिवार्य रूप से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। विदेश यात्रा से लौटने के 5 दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारी को अपने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ यात्रा के दौरान हासिल ज्ञान और अनुभव साझा करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे विदेश यात्राओं की पारदर्शिता, उपयोगिता और उद्देश्य सुनिश्चित होंगे। इसी बीच सरकार ने पिछले वर्ष 23 और 24 भाद्र को हुए जिनजी आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों और शहीद परिवारों के साथ हुए समझौतों के क्रियान्वयन के लिए एक समन्वय एवं सहजीकरण समिति का गठन किया है। रोहतक से भारत के झारखंड स्थित देवघर बोलबम यात्रा के लिए गए तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। मृतकों में गरुड़ा नगरपालिका 6 पुठियाही निवासी 60 वर्षीय नवल जायसवाल, उनकी पत्नी और 10 वर्षीय शिवम महतो शामिल हैं। बताया गया है कि 45 तीर्थयात्रियों को लेकर बस रविवार को वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी। आज सुबह करीब 3 बजे झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में बस और मालवाहक ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। घायलों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जांच में बस चालक को नींद आने की आशंका जताई गई है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारण की जांच जारी है। घटना की खबर फैलने के बाद पुठियाही गांव में शोक का माहौल है। मृतकों और घायलों के परिजन आज सुबह ही भारत के लिए रवाना हो गए। नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पार्टी को एकजुट करने पर जोर दिया है। काठमांडू में आज से शुरू हुई कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष की राष्ट्रीय सभा के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि देश में संकट और राष्ट्रीयता के सामने चुनौतियों के बीच कांग्रेस का एकजुट होना जरूरी है। पार्टी के निवर्तमान सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता के लिए व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाने की पहल करने की बात कही। पूर्व महामंत्री डॉ शशांक कोइराला ने कहा कि पार्टी को एकजुट बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सभा आयोजित की गई है और कांग्रेस एकजुट रही तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अन्य नेताओं ने भी वरिष्ठ नेताओं के योगदान और अनुभव को महत्व देते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सभा का बंद सत्र कल और परसों चलेगा। सुदूर पश्चिम प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री खगराज भट्ट ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रदेश प्रमुख नजीर मियां ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के इस्तीफे के बाद सत्ता समीकरण में बदलाव के साथ भट्ट को प्रदेश का 5वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भट्ट ने नेकपा एमएलए के 3 मंत्रियों और एक राज्य मंत्री को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया आगामी 1 भाद्र को प्रदेश सभा में विश्वास का मत लेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आज प्रदेश सभा को पत्र भेजा है। प्रदेश सभा की बैठक भी 1 भाद्र को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। नेकपा एमएलए द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री बानिया को विश्वास मत लेना पड़ रहा है। 104 सदस्यीय प्रदेश सभा में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 53 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने कहा कि कारागार कानून को समयानुकूल बनाने की तैयारी हो रही है। प्रतिनिधि सभा की कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि कारागार में बंद निर्दोष जेंजी युवाओं के साथ प्रतिशोध की भावना से व्यवहार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जेंजी आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने के विषय में भी सरकार के गंभीर होने की जानकारी दी। बैठक में सांसदों ने कैदियों के लिए स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और मनोसामाजिक परामर्श की व्यवस्था पर जोर दिया। महिला, गर्भवती, दिव्यांग और अन्य संवेदनशील कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। सांसदों ने जेलों में होने वाली मौत, यातना और मारपीट जैसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जवाबदेह बनाने तथा बाल सुधार गृहों में यातना और मारपीट खत्म कर शिक्षा, कौशल विकास और खेलकूद की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने सरकारी सूचना के प्रवाह को और व्यवस्थित, सरल और प्रभावी बनाने की बात कही है। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय में विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों और प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मंत्री पोखरेल ने कहा कि सरकार के सभी काम लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के अनुरूप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की दैनिक जरूरतों को केन्द्र में रखते हुए सुशासन और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री पोखरेल ने विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों की नियुक्ति पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किए जाने का दावा करते हुए कहा कि मंत्रालय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र में समयानुकूल नीतिगत सुधार पर केन्द्रित है। बैठक में संपादकों और मीडिया प्रतिनिधियों ने सरकारी सूचनाओं तक मीडिया की आसान पहुंच सुनिश्चित करने तथा सरकार और मीडिया के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी संवाद लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही स्कूल और उच्च शिक्षा को व्यावहारिक, वैज्ञानिक और जनमुखी बनाने के लिए दीर्घकालीन सुधार और शिक्षा नीति में आवश्यक बदलाव की जरूरत बताई गई। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने दूरसंचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता सुधार को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। संचार मंत्रालय में नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण और नेपाल टेलीकॉम के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि टेलीफोन और इंटरनेट सेवा कमजोर होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, इसलिए नियामक और सेवा प्रदाताओं को परिणाममुखी ढंग से काम करना होगा। मंत्री तिमल सिन्हा ने दुर्गम और सेवा से वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष यानी RTDF की राशि प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने तथा लंबे समय से रुके टावर निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर विस्तार की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। नेपाल टेलीकॉम ने चालू आर्थिक वर्ष में करीब 1000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है। बैठक में शहरी क्षेत्रों में बेतरतीब दूरसंचार तारों के प्रबंधन और संभव स्थानों पर उन्हें भूमिगत करने पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य सेवा विभाग ने सर्पदंश और रेबीज के उपचार में इस्तेमाल होने वाले 25,800 वायल टीके प्राप्त होने की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार इनमें सर्पदंश के 8,200 और रेबीज के 17,600 वायल टीके शामिल हैं। इन्हें टेकू स्थित केंद्रीय वैक्सीन भंडारण केंद्र में रखा गया है और सातों प्रदेशों के स्वास्थ्य आपूर्ति केंद्रों के जरिए संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाएगा। इस बीच गर्मी बढ़ने के साथ मध्य प्रदेश में सर्पदंश के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश के 27 अस्पतालों और सर्पदंश उपचार केंद्रों में जरूरत के अनुसार एंटी स्नेक वेनम भेजना शुरू कर दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF, SDRF, ITBP और स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कुछ लोगों के अब भी सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका है। हादसे से सुरक्षित बाहर निकले लोगों के मुताबिक सुरंग में अचानक तेज रफ्तार से पानी और हवा घुसी, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के पीपलकोटी पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी सेवाओं में होने वाली विदेश यात्राओं को व्यवस्थित और मितव्ययी बनाने पर सरकार का जोर। विदेश यात्रा के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष की राष्ट्रीय सभा में नेताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के एकजुट होने पर दिया जोर। खगराज भट्ट बने सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री। रोहतर से बोलबम यात्रा के लिए भारत गए 3 नेपाली नागरिकों की झारखंड में बस दुर्घटना में हुई मौत। और भारत के राज्य उत्तराखंड में हाइड्रो पावर परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।